ओके, उसके बाद हम सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस को देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ल्यूपस नेफ्राइटिस में 6 क्लासेस होती हैं। क्लास 1 सबसे माइल्ड है और क्लास 6 सबसे सिवियर है। तो बायोप्सी पे हम देखेंगे कि कितने परसेंट इन्वॉल्वमेंट है रीनल ग्लोमेरुलाई की, उसके बेसिस पे हम उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास 1 के अंदर जो है ना वो मिनिमल मेसेंजियल इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसके अलावा जो क्लास 2 है उसके अंदर मेसेंजियल प्रोलिफरेशन है। टाइप 3 के अंदर जो है वो हमारे पास फोकल लुपस नेफ्राइटिस होता है, इन विच देयर इज़ लेस दैन 50% ऑफ द रीनल ग्लोमेरुलाई आर बीइंग इन्वॉल्वड। एंड इन क्लास 4 मोर देन 50% ऑफ द रीनल ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व, या इसको हम डिफ्यूज लुपस नेफ्राइटिस भी कह सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास टाइप 5 जिसमें मेम्ब्रेनस लुपस नेफ्राइटिस है, और टाइप 6 है जिसमें एडवांस क्लीरोसिंग लुपस नेफ्राइटिस है इन्वॉल्विंग मोर देन 90% ऑफ द ग्लोमेरुलाई जो कि स्क्लेरोज्ड हो चुके हैं। तो आप देखिए क्लास 4 में भी हम ये कह रहे हैं ना कि मोर देन 50% इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसमें अभी फाइब्रोसिस या स्क्लेरोसिस नहीं हुई। और जो टाइप 6 है वो एडवांस क्लोजिंग है जिसके अंदर मोर देन 90% ग्लोमेरुलाई आर बीइंग इन्वॉल्व एंड दे आर स्क्लेरोस्ड और फाइब्रोस्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब स्क्लेरोसिस और फाइब्रोसिस हो जाएगी तो उसमें जो है ना रीनल टिश्यू डैमेज हो जाएगा और वो सबसे सिवियर फॉर्म है। उसके बाद जो इसकी मैनेजमेंट है ना उसको हमने इस तरह से समझना है कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे हैं वही, उसमें हमने ड्रग्स को कैसे देना है वन बाय वन, सबसे पहले क्या देना है उसके बाद क्या देना है इसको हमने याद रखना है। तो ओवरऑल अगर हम एक स्कीम बनाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि क्योंकि रीनल इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिस्टमिक ट्रीटमेंट ही, तो जिसमें फर्स्ट लाइन हमारे पास हमेशा स्टीरॉइड ही होगी जिसको हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फॉर्म में देना है। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म है जो कि है क्लास 3 और 4, उसमें हमने क्या करना है कि पहले पल्स स्टीरॉइड देंगे 1 to 3 days के लिए, और उसके बाद फिर इसको मेंटेनेंस स्टीरॉइड भी हम ओरल स्टीरॉइड ट्रीटमेंट में डाल देंगे। उसके साथ ही कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम और भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे जो कि स्टीरॉइड स्पेयरिंग का काम करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन में सबसे पहले माइकोफेनोलेट मॉफिटल आएगा या एजिथायोप्रीन आएगा। ठीक है, तो हमने MMF को हमेशा पहले बोलना है इन टर्म्स ऑफ द रीनल इन्वॉल्वमेंट। अगर MMF नहीं दे सकते तो एजिथायोप्रीन, ठीक है, तो माइकोफेनोलेट मॉफिटल और एजिथायोप्रीन को हम देंगे। अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा फिर हम दूसरा स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट कंसिडर करेंगे, दैट इज साइक्लोफॉस्फामाइड प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन में देना होगा। फिर उसके बाद अगर पेशेंट उससे भी इम्प्रूव ना हो फिर हम बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर आएंगे जिसमें हमारे पास रिटोक्सिमैब है, या फिर और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अगर रिफ्रैक्ट्री है बिल्कुल पेशेंट, तो उसमें प्लाज्मा फेरेसिस, लेफ्लियोनामाइड और डाउन द लिस्ट हम साइक्लोस्पोरिन भी कंसिडर कर सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन इसलिए डाउन द लिस्ट क्योंकि वो वैसे भी नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज करती है एंड ऑलरेडी द पेशेंट इज़ हैविंग ल्यूपस नेफ्राइटिस। ठीक है, तो बेहतर ये है कि इसको ना ही बोलें, लेकिन अगर फिर भी वो पूछते हैं तो वी कैन से कि साइक्लोस्पोरिन। तो इसकी रिजीम किस तरह से होगी, हम इसको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को पल्स में देना है 500 to 1000 mg पर डे फॉर 1 to 3 days, एंड फॉर द मेंटेनेंस वी कैन गिव 0.5 to 1 mg पर kg पर डे, एंड देन वी आर गोइंग टू टेपर इट डाउन टू लेस देन 7.5 mg पर डे। राइट, उसके बाद हमने क्या करना है, 6 months तक पेशेंट को फॉलो करते रहना है कि पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। 6 months से पहले हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है या नहीं, एटलीस्ट हमें 6 months का टाइम देना होगा। 6 months के बाद अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो फिर उसके अंदर हमने माइकोफेनोलेट मॉफिटेल और एजिथायोप्रीन देंगे क्योंकि हमने स्टीरॉइड को कम करना है। हम स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट के तौर पे MMF और एजिथायोप्रीन को देंगे। MMF को हम देंगे इन अ डोज ऑफ 1 to 2 grams पर डे, या फिर एजिथायोप्रीन 2 mg पर kg पर डे, एंड लो डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लो डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ इसलिए मैंशन है क्योंकि हम इसके साथ स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट दे रहे हैं और इसी मकसद से दे रहे हैं ताकि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज को डिक्रीज कर सकें ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमने पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को देखते हुए ये देखना है कि अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हो रहा है रीनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या वैसे भी रीनल इन्वॉल्वमेंट में एसी इनहिबिटर्स का बहुत अच्छा रोल होता है तो हम इसमें एसी इनहिबिटर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर पेशेंट को एंड स्टेज रिनल डिजीज़ डेवलप हो रही है तो कौन सा हमने टाइप ऑफ डायलिसिस करना है। हम हीमो डायलिसिस करेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस जॉइंट्स में प्रेफर नहीं होती बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर जो है वो रीनल ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है, रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट अगर रीनल ट्रांसप्लांट कंसिडर करें तो उसमें MMF की डोज 2 to 3 grams पर डे फॉर 6 months हम देंगे, फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके 1 to 2 grams पर डे कर लेंगे। ठीक है। कमिंग बैक टू आवर मेन जो ट्रीटमेंट था वो ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया, 6 months के बाद देखा पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, फिर MMF या फिर एजाथियोप्रिन को लो डोज स्टीरॉयड के साथ हमने उसको एज अ मेंटेनेंस थेरेपी कंटिन्यू कर लिया। अगर पेशेंट इम्प्रूव ना कर रहा हुआ 6 months पे, जब हमने इसको पेशेंट को देखा अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करेंगे कि जो है यही MMF और एजाथियोप्रिन देंगे, और अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा था तो फिर हम दूसरा जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कंसिडर करेंगे, वो है साइक्लोफोसफामाइड। एकदम से हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स पे जंप नहीं करना, हमने स्टेप वाइज चलना है, पहले स्टीरॉयड फिर MMF फिर एजाथियोप्रिन, फिर भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करें देन साइक्लोफोसफामाइड देंगे, और साइक्लोफोसफामाइड को हम देंगे विद स्टीरॉयड। ठीक है, पल्स में पहले और फिर उसके बाद डेली लो डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। दोबारा से हमने पेशेंट को रिव्यू किया, अगर तो पेशेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा था फिर उसके बाद हम बायोलॉजिकल एजेंट्स पे देंगे। ठीक है, तो पहले हमने स्टीरॉयड दिया, फिर MMF एजाथियोप्रिन दिया, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर हम उसी को कंसिडर करें, कंटिन्यू करेंगे एज रिमिशन MMF और एजाथियोप्रिन को। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पहले साइक्लोफोसफामाइड देंगे, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा फिर बायोलॉजिकल एजेंट प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब साइक्लोफोसफामाइड की डोज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है कि साइक्लोफोसफामाइड को हमने इन द फॉर्म ऑफ अ बोलस देना है, या हम जो पल्स देते हैं वो देंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साइक्लोफोसफामाइड के जो पल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेस्टरिजो रेजिम कहते हैं। तो इसको हमने देना है इन द फॉर्म ऑफ IV ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स IV पल्स फॉर 3 days, एंड डोज क्या होगी 0.5 to 1 mg पर सॉरी 500 to 1000 मिलीग्राम्स फॉर 1 to 3 days, एंड देन वी आर गोइंग टू गिव ओरल प्रेडनिसोलॉन 0.5 to 1 mg पर kg पर डे। और जो है साइक्लोफोसफामाइड की पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है लो डोज और एक है हाई डोज। तो लो डोज में 500 mg हम देंगे, लेकिन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देंगे, 2 weekly देंगे फॉर 6 months, उसके बाद फिर हम MMF और एजाथियोप्रिन देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो हम हाई डोज देना चाहते हैं तो हम 500 to 1000 mg देंगे, लेकिन मंथली देंगे, सॉरी यस मंथली देंगे, और उसके बाद फिर हम उसको एवरी 6 monthly कर देंगे, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर देंगे। इतनी हाई डोज को हमने बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं देना। अच्छा, उसके बाद हमने 6 monthly उसको रिव्यू करना है, अगर पेशेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर हमने MMF और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरॉयड के साथ देना है। ये उस कंडीशन में हम बात करें कि अगर हमने पहले साइक्लोफोसफामाइड दिया है फिर उसके बाद हम अगर पेशेंट नहीं इम्प्रूव कर रहा तो फिर MMF, यानी ये कि अगर पेशेंट MMF से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो साइक्लोफोसफामाइड देंगे, अगर साइक्लोफोसफामाइड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो MMF देंगे। लेकिन जो पहला वाला हमारे पास ऑप्शन था उसको हम पहले कंसिडर करेंगे, यानी MMF पहले देंगे साइक्लोफोसफामाइड बाद में। और अगर पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर रहा था तो हम MMF और एजाथियोप्रिन को ही लो डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ कंटिन्यू करेंगे एट द सेम डोज जो हमने पीछे डिस्कस की थी, और अगर नहीं इम्प्रूव कर रहा तो फिर हम रिटोक्सिमैब और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कंसिडर करेंगे।